दूसरे के द्वारा बताया हुआ ये दोष है उसका निवारण हो सके अथवा न हो सके, किंतु अपने जाने हुए देश के त्याग में सभी साधक सर्वदा साधे। दोष का ज्ञान और दोष जनित वेदना प्राकृतिक नियमों के अनुसार तो युगपद है, क्यों कोई भी अपने को दोषी बनाकर रखना पसंद नहीं करता। यही कारण है कि जब कोई किसी को बुरा समझता है तो उसे अच्छा नहीं लगता, किंतु जब वो स्वयं अपने देश को जानता है तब उसे अपने संबंध में विचार करने की सामर्थ्य आती है और अपने पर अपने द्वारा न्याय करने में तत्पर होता है। निर्दोषता सुरक्षित रखने के लिए सर्वोत्कृष्ट उपाय है अपने से न्याय करना। जब हम अपने से न्याय करना आरंभ कर देते हैं तब वर्तमान निर्दोषता स्वतः सुरक्षित हो जाती है। आप विचार करें परस्पर में बैर भाव क्यों होता है, जीवन में अशुभ संकल्प क्यों उत्पन्न होते हैं। आपको स्पष्ट ज्ञान होगा कि जब तक हम किसी को बुरा नहीं समझते तब तक बैर भाव की उत्पत्ति नहीं होती, और जब बैर भाव की उत्पत्ति ही नहीं होती तब निर्भयता अपने आप आती है। जिसके जीवन में निर्भयता है उसी के जीवन में निर्भयता है, और जब निर्भयता आती है तो समता भी आ जाती है, और जब समता आ जाती है तो मुदिता अर्थात अखंड प्रसन्नता स्वतः रहने लगती है। अब आप विचार करें बैर भाव से रहित होने में कितना लाभ है, परम लाभ है। बैर भाव का जो सूक्ष्म रूप है वो क्या है, दूसरों को बुरा समझना, गैर मानना, उनके और अपने बीच में स्वरूप की एकता स्वीकार न करना, इन्हीं सब बातों से बैर भाव पोषित होता है। जब साधक परदोष दर्शन से रहित हो जाता है तब उसे अपने दोषों का ज्ञान होता है। दोष का ज्ञान जिस काल में होता है उस काल में वो निर्दोष होता है, अर्थात निर्दोषता में ही दोष का ज्ञान होता है। उसे ये दिखा तो होती है खाए मुझसे भूल हुई, पर उसे ये अनुभव नहीं होता कि मैं भूल कर रहा हूं। दोष किया जाता है, दोष सदैव नहीं रहता। ये नियम है कि करने का अंत होता है, उसके परिणाम का भी कालांतर में नाश होता है। किए हुए का परिणाम सदैव नहीं रहता और न करना सदैव रहता है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि दोष सदैव नहीं रहता और उसका जो फल है वो भी नाश हो जाता है। यह है प्राकृतिक विधान। अब केवल इतना ही दायित्व है अपने पर कि हम अपने ज्ञान से अपनी वर्तमान निर्दोषता सुरक्षित रखें। उसका सबसे सुंदर उपाय है परदोष दर्शन न करना। न हम किसी को बुरा समझें और न किसी की बुराई सुने, तो जो दूसरों की बुराई से अपने को बचा लेता है वो बड़ी ही सुगमता पूर्वक निर्दोष होने के लिए तत्पर हो जाता है। आज देखिए, हमें जो दोष को दोष जानने की जो शक्ति मिली है उसका उपयोग तो है जीवन में, उसका उपयोग है अपने पर। और प्रत्येक भाई या प्रत्येक बहन को ये अनुभव होगा कि उसमें क्षमा करने की शक्ति भी है। ये क्षमा करने की शक्ति न होती तो प्रेम बुराई करने पर अपने को क्यों संतुष्ट रखता है? यही कारण है वो अपने को क्षमा कर लेता है। क्यों रखता है क्या बताएं? परिस्थिति ऐसी आ गई जिसमें मुझे क्रोध आ गया, मुझसे ये भूल हुई, तो भूल का कारण परिस्थिति को मान लेता है। ये क्या है? ये बड़े ही सूक्ष्म ढंग से अपने को क्षमा करना है। परिस्थिति तो साधन सामग्री है और दोष भूल देने पर तो अपने दोष का कारण परिस्थिति को मान लेना ये अपने को क्षमा करना है। पर आप जानते हैं अपना विकास अपने को क्षमा करने से नहीं होता। अपना विकास होता है अपने प्रति अपने ही द्वारा न्याय करने। ये क्षमा का जो प्रयोग है ना, ये पर के लिए है और ये न्याय की प्रणाली जो है वो अपने लिए है। तो जो मानव अपने प्रति न्याय करने लगता है तब बड़ी सुगमता पूर्वक निर्दोषता को सुरक्षित रखता है। क्या ये बात बहुत गंभीरता से विचारनी है कि निर्दोषता मौजूद है, हम किए हुए दोषों से उसे ढकते रहते हैं। निर्दोषता कहीं से आएगी, उसकी उत्पत्ति होगी, ऐसी बात नहीं है। निर्दोषता तो आपके जीवन में है। क्यों? जिसने आपका निर्माण किया है वो निर्दोष है। तो निर्दोष का किया हुआ निर्माण दोष युक्त नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे इस पर दोष की उत्पत्ति क्यों हुई? अपनी भूल से। भूल होती है जाने हुए की, बिना जाने की भूल नहीं होती। तो अपनी भूल क्या है कि हमने अपने संबंध में विचार करना बंद कर दिया। मानव प्रयासन की प्रणाली के अनुसार प्रत्येक भाई बहन को जगने के बाद, सोने से पहले, कार्य के आज और अंत में शांत होना है। शांत होने से जो हम कर चुके हैं उसकी स्मृति आती है। उसके आने से हम अपनी वस्तु स्थिति से परिचित होते हैं। और जब साधक अपनी दशा से भली भांति परिचित हो जाता है तब उसमें चेतना आती है, जागृति आती है। वो विचार करने लगता है मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। बस जब उसने ये स्वीकार किया कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, इसका अर्थ ये हो जाता है कि अब कभी नहीं करूंगा। इस प्रकार दैनिक व्यक्तिगत सत्संग के द्वारा हम अपना निरीक्षण कर सकते हैं और निरीक्षण के आधार पर जो भूल हो चुकी है उसके न दोहराने का निर्णय कर सकते हैं। जब आप किसी दूसरे से अपने कर्तव्य के संबंध में पूछते हैं तब आप सचमुच अपनी ओर देख के नहीं। मेरा ये अनुभव है कि आपके कर्तव्य अपने कर्तव्य का ज्ञान अपने में मौजूद है और उसके पालन की सामर्थ्य भी है। यदि ऐसा न होता तो अपने पर कोई दायित्व नहीं हो सकता। जिस बुराई को हम बुराई करके नहीं जानते भला उसके त्याग का प्रश्न ही कैसे आएगा, और जिसे नहीं कर सकते वो हमारा कर्तव्य कैसे होगा। तो ये बात प्रत्येक भाई बहन को अपने जीवन में से सदा के लिए निकाल देना चाहिए कि हमारा कर्तव्य कोई दूसरा बताए। हाँ, ये बात अवश्य है कि हम जिन पर श्रद्धा रखते हों उनका परामर्श ले सकते हैं और अपने निर्णित कर्तव्य का समर्थन पाते हैं, आज्ञा नहीं, ज्ञान नहीं, केवल समर्थन। हाँ, ठीक बात है। और प्राचीन प्रथा के अनुसार यही प्रणाली थी कि जब कोई साधक किसी से परामर्श लेता तो वो स्वयं अपनी बात सामने रख देता कि ये मेरी दशा है, और वो बड़े संकेत से कहता कि अच्छा भाई तुम क्या कर सकते हो। मैं ये कर सकता हूं। अगर वो ठीक है तो समर्थन मिलता, और समर्थन को लेकर वो अपने कर्तव्य को पर स्वयं आरूढ़ हो जाता। क्यों? वो उसका अपना जाना हुआ था। यूं उससे स्वयं क्रम विकास होता, जैसे जैसा कर्तव्य पालन करता जाता वैसे वैसे कर्तव्य का ज्ञान भी बढ़ता जाता, और एक समय वो आ जाता कि वो जो करना चाहिए था उसके अंत में उसे पूरा करके करने से उसके राज से रहित हो जाता। सच पूछिए तो क्या करना है? करने के राज से रहित होना है, और क्या करना है? करने के राज से रहित होने पर तादाद नहीं रहेगा वस्तुओं से, न योग्यता से, न परिस्थिति से, न सामर्थ्य से तादाद नहीं रहेगा, अर्थात असंगता आ जाएगी। और असंगता के आते ही निर्वासना, निर्वैरता, निर्भयता, समता और मुदिता, ये दिव्य गुण स्वतः प्राप्त होते हैं। अब आप सोचिए कि करने का राग रहते हुए असंगता संभव नहीं है, और असंगता के बिना सर्वतोमुखी विकास संभव नहीं है। अब प्रश्न सामने आता है, यदि हम अपने कर्तव्य से परिचित हैं तो अकर्तव्य की उत्पत्ति क्यों होती है? मेरे ज्ञान से उस ज्ञान का जिससे हम कर्तव्य को जानते हैं अनादर करने से अकर्तव्य की उत्पत्ति होती है, न जानने से कर्तव्य की उत्पत्ति नहीं होती। जैसे कल्पना करो, आपके जितने संबंधी हैं ये सब किसी न किसी रूप में आपको अपना मानते हैं और आप उन्हें अपना मानते हैं, किंतु क्या कोई आपका ऐसा संबंधी है जो केवल आप ही का हो? आपकी पत्नी किसी की बहन भी है, किसी की बेटी भी है, किसी की माँ भी है। अनेक संबंध प्रत्येक व्यक्ति के साथ है। और आप ये सोचें कि ये सारे संबंध तोड़कर केवल हमारे ही संबंध को माने, तब ये संभव होगा? कभी नहीं होगा। हाँ, एक बात संभव होगी कि यदि आप चाहें तो सभी संबंधों को तोड़कर किसी एक में और उस एक में जो सभी का हो, उसमें नहीं जो किसी का हो किसी का न हो, तो जो सभी का एक है वो तो सर्व का आश्रय न होगा, सर्व का प्रकाशक न होगा, सर्व का ज्ञाता न होगा। हाँ, आप स्वयं सभी संबंध तोड़कर उससे संबंध जोड़ सकते हैं, और जब उससे संबंध जोड़ेंगे तो सभी की सेवा का दायित्व आप पर आ जाएगा, क्योंकि सभी उसके हैं। जिसको आपने अपना स्वीकार किया उसके सभी हैं, तो जब उसके सभी हैं तो उसके नाते सभी की सेवा आप कर सकते हैं। किंतु किसी और को अपना न मानने से किसी से सुख की आशा नहीं कर सकते। अब आप विचार करें कि जब आपने किसी एक के नाते सभी की सेवा की और सभी की ममता तोड़ने से अपने जीवन में से सुख की आशा का त्याग किया, अब आपका चित्र क्या होगा? जो मानव किसी से सुख की आशा नहीं करता और सभी की सेवा करता है, उसे क्या प्राप्त होता है? सुख की आशा न करने से उसके जीवन में क्षोभ नहीं होता, क्रोध नहीं होता, राग नहीं रहता। क्षोभ और क्रोध के न रहने से स्मृति आती है, वो जानता है कि मुझे क्या करना चाहिए, वो जानता है कि मैं क्या हूं, वो जानता है मेरा कौन है। इसकी स्मृति क्रोध रहित होने पर स्वतः जागृत होती है। आज हमने इस मानव जीवन के विज्ञान को भुला दिया है। हम लोग मानने लगे हैं कि मानो क्रोध प्राकृतिक दोष है। ये प्राकृतिक दोष नहीं है, ये अपना बनाया हुआ दोष है। और ये दोष तब आता है जीवन में जब हम किसी से सुख की आशा करते हैं और हम दूसरों सुख की आशा तब करते हैं कि जब अपने कर्तव्य से चित होते हैं, अथवा यूं कहो कि जब हम अपने प्रेमास्पद को भूलते हैं, जो अपना नहीं है उसे जब अपना मानते हैं तब सुख की आशा करते हैं। जो हमारा आपका सभी का अपना है उसको जब आप अपना मानते हैं तब आप किसी सुख की आशा नहीं करते। इस दृष्टि से विचार करने पर यह स्पष्ट बोध हो जाता है कि क्रोध प्राकृतिक दोष नहीं है, अपितु अपनी भूल का परिणाम है। आप सोचिए तो सही, जिससे आप सुख की आशा करते हैं क्या वो स्वयं दुखी नहीं है? किसी निर्धन से कोई धन की आशा करे, किसी निर्बल से कोई बल की आशा करे, तो ये आशा धर्मात्मक नहीं है? आप विचार करें, गंभीरता से विचार करें। आंशिक सुख जीवन में है, सर्वांश में कोई सुखी नहीं है। आप स्वयं भी एक अपने संबंध में सोचेंगे तो आप सर्वांश में सुखी नहीं है। इसीलिए आप किसी के दुख को दूर नहीं कर सकते। ये मानव मिथ्या ज्ञान कर लेता है कि मैं तुम्हारा दुख दूर कर दूंगा, बिल्कुल मिथ्या अनुमान है। क्यों? तुम सर्वांश में सुखी हो तो दुखी कर दोगे। हाँ, एक बात कर सकते हैं, आंशिक सुख को बांट सकते हैं, पराये दुख से करुणत हो सकते हैं, दूसरे के सुख से प्रसन्न हो सकते हैं, यही सेवा है। तो आप सेवा कर सकते हैं, आप किसी का दुख दूर नहीं कर सकते। जब आप किसी का दुख दूर नहीं कर सकते तो आप दूसरों से क्यों आशा करते हैं कि वह उसके द्वारा आपको सुख मिले? ये आशा करना बड़ी भूल है। और इसी भूल का परिणाम ये होता है कि परस्पर में राग द्वेष बन जाता है। हम सोचने लगते हैं उन्होंने वो हमारे साथ नहीं किया जिन्हें करना चाहिए था। हम ये भूल जाते हैं कि भाई वो कर भी सकते थे जो हम चाहते हैं। ऐसी कल्पना करो, मेरे साथ कई मित्र रहते हैं। अब मैं ये सोच लूं जो मेरे साथ मेरा मित्र रहता है वो किसी और को अपना न माने, ये मेरे अधिकार की बात है? ये कभी संभव है? कभी संभव नहीं है। जिसे आप अपना कहते हैं वो औरों का भी है भाई। जब वो औरों का भी है तो आप उसके द्वारा सभी के अधिकारों को शोषित क्यों नहीं होने देते? क्यों नहीं सभी को प्यार करने देते? क्यों नहीं सभी की सेवा करने देते? आप ये क्यों सोचते हैं कि जिसको हम नहीं प्यार करते उसको वो भी प्यार न करे, जिसे हम नहीं मानते उसे वो भी न माने? ये आप सोची कैसे बातें? आप कहेंगे कि हम जो कुछ करते हैं वो उसके हित के लिए करते हैं। विचार तो कीजिए, हित किसमें है? विद्रोह में हित है, क्रोध में हित है, द्वेष में हित है, वैरभाव में हित है? कभी नहीं। हित प्यार में है, हित उदारता में है, हित त्याग में है। त्याग आप करते नहीं। क्यों? त्याग जब आप करेंगे तब आपके पास आपका करके कुछ नहीं हो रहेगा। ये जो आप अपने में गुणों का अभिमान करते हैं ये एक प्रकार का राग ही है, क्योंकि गुण है प्राकृतिक और आप मान लेते हैं अपने, और दोष है भूल जनित और आप मान लेते हैं प्राकृतिक। तो सत्संग के प्रकाश में ऐसा अनुभव होता है कि हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में ये अधिकार ही नहीं है कि हम ये बात स्वीकार करें कि दूसरे लोग वो करें जो हम चाहते हैं। ये अधिकार ही नहीं है। दूसरे लोग जो चाहे तो करें, पर
प्रिय प्राप्ति उत्पन्न हो गई। जिस समय स्मृति आ गई उसी समय प्राप्ति भी हो गई, और तो स्मृति प्राप्ति के अर्थ में भी है और स्मृति प्रीत के अर्थ में भी है और स्मृति ज्ञान के अर्थ में भी है। तो कर्तव्य की स्मृति, अपने स्वरूप की स्मृति, अपने प्रिय की स्मृति कब आएगी? जब हम क्षोभ और क्रोध से रहित होंगे। क्षोभ के रहते हुए, क्रोध के रहते हुए न कर्तव्य की स्मृति आएगी, न अपने स्वरूप की स्मृति होगी, न अपने प्रिय की स्मृति होगी। अब आप सोचिए कि क्रोध रहित होना कितना आवश्यक है। आप कहेंगे कि हमको तो क्रोध नहीं आता, हम किसी पे बिगड़ते नहीं, हम किसी कुछ कहते नहीं, इसका अर्थ ये नहीं कि क्रोध नहीं आता। क्रोध का स्वरूप क्या है? किसी दूसरे की कोई भी बात जिस वक्त आपको ये भाषित होती है ये ठीक नहीं है, और उसके पश्चात हृदय करुणा से नहीं भरता, उदारता से नहीं भरता, समझना चाहिए क्रोध से आ जाएगा, नहीं तो करुणा उदय होनी चाहिए ना, उसके प्रति सद्भावना देखनी चाहिए ना, उसके प्रति प्यार उदय होना चाहिए ना, कहे प्यारे तुम ऐसा करते हो बड़ा दुख होता है, कहीं आवाज आती है क्या, आवाज निकलती है तुम बड़े बेसमझ हो, तुम बड़े बदतमीज हो, तुम्हारे समान कोई धूर्त नहीं है, तुम ऐसा करते हो, ये आवाज निकलती है, ये आवाज क्रोध का परिचय है, कहीं ये आवाज निकलती मेरे प्यारे तुम ऐसा करोगे तो मुझे बड़ा दुख होता है, और देखो कोई बात नहीं है, क्या तुम मेरी प्रसन्नता के लिए ऐसा करना छोड़ सकते हो क्या, मुझे बड़ा हर्ष होगा, ये भी बढ़िया बात नहीं है, इससे और बढ़िया बात तो यही है कि भीतर इतनी इतनी सद्भावना जागृत हो कि उसकी भूल को हमें अपनी भूल मालूम पड़े, क्या हमसे कोई भूल हुई है इसलिए इन्होंने भूल करना सीख लिया, जिसको हम प्यार करते हैं, जिसको हम अपना मानते हैं, उसमें भूल क्यों हुई मालूम होता है, हमारे द्वारा प्यार नहीं मिला, मालूम होता है हमसे कोई भूल हो गई है, यदि हमसे भूल न हुई होती तो भला हमारे साथी भूल करते, इस प्रकार का विचार जब उदय हो, इस प्रकार की विचार लहरियां जब उत्पन्न हो, थॉट वेव उत्पन्न हो, तब आप सचमुच उसके हित चिंतक हो सकते हैं, उसकी सेवा कर सकते हैं, और जब तक ऐसी बात नहीं आती तब तक तो यही समझना चाहिए कि किसी ने राष्ट्र बनकर शासन किया, तो किसी ने संबंधी बनकर शासन किया, तो किसी ने भय देकर शासन किया, तो कभी प्रलोभन देकर शासन किया, शासक जो होता है वो सुधारक नहीं होता, शासक कभी सुधारक नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ और न हो सकता है और न कभी होगा, इसलिए ये धर्मात्म धारणा हम बल के प्रयोग से किसी का सुधार कर लेंगे बड़ी ही भूल की बात है, हाँ सेवा में करने में असमर्थ पाते हो तो क्षमा मांगे, कहें हम इस योग्य नहीं है क्षमा आपकी सेवा कर सके, त्याग कर सकते हैं, असहयोग कर सकते हैं, असहयोग में द्वेष की गंध भी नहीं होती, असहयोग में तो एक प्रकार की अपनी असमर्थता होती है और एक नवीन जीवन की खोज होती है, असहयोग का अर्थ क्या है, अच्छा भाई हम आपकी सेवा नहीं कर सके इसलिए ममता का त्याग करते हैं, संबंध विच्छेद करते हैं, और संबंध विच्छेद करके उससे अभिन्न होंगे जो हमारा अपना है, आप हमारे अपने नहीं हैं, आप तो हमारी प्यारी की हैं, उनके नाते हमें आपकी सेवा करना है, हमने भूल ये की थी कि अपने प्यारे को भूल गए और आपको अपना मान लिया, आपको अपना मानने से हमारे में विकार की उत्पत्ति हो गई, क्योंकि जहां ममता होती है वहां विकार की उत्पत्ति होती है, और विकार के उत्पन्न होने से हम अपने कर्तव्य को भूल गए और आपकी कर्तव्य की बात सोचने लगे, ये हमसे भूल हुई, इसलिए हम अब आपसे असहयोग करते हैं, और जो हमारा अपना है जो आपका भी अपना है उससे संबंध स्वीकार करते हैं, यदि हमारे जीवन में सामर्थ्य आएगी तो हम आपकी सेवा करेंगे पर अपना मानकर नहीं करेंगे, अपना मानकर नहीं करेंगे, हमने भूल की थी जो आपको अपना माना था, आप हमारे अपने नहीं हैं, आप तो हमारे प्यारे के प्यारे हैं, विचार कीजिए, अपने नहीं है इसका मतलब गैरियत नहीं, आप तो हमारे प्यारे के प्यारे हैं, हमारे प्यारे कौन है, जो हमें जानते हैं जिन्हें हम नहीं जानते, और उनके आप प्यारे हैं तो हमारे प्यारे के प्यारे होने से आप हमारे सेव्य हैं, हम आपके सेवक हैं। हमने भूल की थी कि ममता के आधार पर आप पर अपना अधिकार माना था और आपकी सेवा नहीं की थी। अब हम आपकी या तो सेवा करेंगे और जब तक सेवा के योग्य नहीं होंगे तब तक हम असहयोग रखेंगे और वो सदा के लिए आपकी ममता से रहित होकर निर्विकार होकर अपने प्यारे के नाते आपकी सेवा करेंगे। तब कहीं जीवन में निर्दोषता सुरक्षित रहती है। हम लोगों ने इस बात पर विचार करना बंद कर दिया कि हमारे दुख का कारण कोई दूसरा हो ही कैसे सकता है, और जब तक आप किसी को अपने दुख का कारण नहीं मानते तब तक आपको क्रोध आया क्यों? विचार तो कीजिए, क्रोध क्यों आया, द्वेष क्यों उत्पन्न हुआ, हमने किसी को बुरा क्यों समझाया? तभी ना हम बुरा समझते हैं जब हम ये मानते हैं कि आपने हमें दुख दिया। मैं आपसे पूछता हूं, अगर कोई हमें दुख दे सकता है तो क्या कभी दुख मिट सकता है? बहुत गंभीरता से विचार करें, ये अध्यात्मवाद है। अगर हमें कोई दुख दे सकता है तो दुख मिट ही नहीं सकता, एक बात। दूसरी बात सोचिए, क्या दुख उस प्रभु के विधान से मिला है? बहुत गंभीरता सोचिए, उसने दुख दिया है? नहीं, उनमें दुख है नहीं और जगत दुख दे सकता नहीं। भला सतत परिवर्तनशील जगत, पर प्रकाश जगत हमको दुख दे पाएगा? और जिसमें दुख है ही नहीं उससे दुख मिलेगा? तो मानना पड़ता है कि हमारे दुख का कारण कोई और नहीं है। या तो दुख प्राकृतिक विधान है और हित के लिए है, क्यों? दुख से सुख के प्रलोभन का नाश होता है। विधान जो होता है वो मंगलकारी होता है। यदि आप ये सोचें कि ऐसे दुख भी तो आते हैं जिनका कर्ता कोई व्यक्ति नहीं दिखाई देता और स्वयं भी नहीं होते और दुख आ जाता है, तो वो दुख वास्तव में आपको भासता है। कब? कि जब आप किसी वस्तु किसे तद्रूप होकर उसका सुख भोगते हैं। मुझे अंधे होने का दुख क्यों हुआ? आंखों का सुख भोगने से। अगर आंखों का सुख न भोगता तो अंधे होने का दुख हो सकता था क्या? तो ये जो दुख आपको भाषित होता है वो अपनी भूल से भाषित होता है, और ये जो परिवर्तन आता है कि वस्तु का वियोग हो गया, व्यक्ति का वियोग हो गया, परिस्थिति बदल गई, ये विधान है। तो परिवर्तन का अर्थ ये थोड़ी है कि आपको दुख हो। आपको दुख तो आपकी ममता से होता है। परिवर्तन तो आपको एक अलौकिक जीवन के लिए प्रेरणा देता है। आप उस दिव्य जीवन से विमुख होकर इसी जड़ता के साम्राज्य में रहना चाहते हैं। ये आपकी भूल है। इस भूल से आपको परिवर्तन दुखद मालूम होता है। आप सोचिए तो सही, अगर परिवर्तन का विधान हटा दिया जाए और जो बीज बोया है वो वृक्ष न बने तो आपको क्या मिलेगा जी? अगर पिता का वीर्य माता का रज शरीर के रूप में न बदले और शरीर विकसित न हो तो क्या आपको कुछ लाभ मालूम होगा? आप कहेंगे कोई लाभ नहीं होगा, बड़ी हानि होगी। तो परिवर्तन जीवन में विकास का मूल है, विकास का मूल है। आप विचार तो कीजिए, अगर शरीर नहीं रहता है, अगर वस्तु नहीं रहती है, तो इसका अर्थ यह है कि शरीर और वस्तु से परे जो जीवन है उसमें आपका प्रवेश होता है। परंतु आप उस परिवर्तन को अपने विकास का साधन न मानकर कह लगते हैं हम तो बड़े अभागे हैं, क्यों अमुक वस्तु नहीं रही हो, अमुक व्यक्ति नहीं रहा हो। भाई जरा सोचो तो सही, जो जो नहीं था वो ही नहीं रहा, क्या जो है वो भी नहीं रहा? जो है वो तो सदैव है, परंतु हमने है में आत्मीयता स्वीकार नहीं की, नहीं में ममता कर ली, परिवर्तन ने ममता के त्याग की सामर्थ्य दी। हम इस रहस्य को भूलकर अपने को दुखी बनाते हैं, दुखी होते हैं। वास्तव में मानव जीवन दुख भोगने के लिए नहीं है, सुख भोगने के लिए नहीं है। सुख दुख भोग, सुख दुख का भोग तो पशु पक्षी भी कर सकते हैं। मानव जीवन सुख की दासता से रहित होने के लिए, दुख के भय से रहित होने के लिए, जगत के लिए उपयोगी होने के लिए, अपने लिए उपयोगी होने के लिए, प्रभु के लिए उपयोगी होने के लिए मिला है। ऐसा अनुपम जीवन हम सबको प्राप्त है, फिर भी आज हम अपने को अभागा माने, दुखी माने, अपने दुख का कारण दूसरों को माने, दूसरों के दुख के कारण बन जाए, ये अपनी भूल ही है। और इस भूल का नाश एकमात्र सत्संग से ही साध्य है। सत्संग का अर्थ है का संग, अविनाशी का संग, वस्तु का संग नहीं, व्यक्ति का संग नहीं, परिस्थिति का संग नहीं, अवस्था का संग नहीं, श्रम का संग नहीं, श्रम रहित होकर है का संग। ये सत्संग अगर आप अपना लेते हैं, अर्थात प्रत्येक कार्य के आज और अंत में शांत रहते हैं, जगने के बाद सोने से पहले शांत होते हैं, जैसे जैसे आप शांत का संपादन करते जाएंगे वैसे वैसे आपका सर्वतोमुखी विकास होगा। शांत में ही कर्तव्य की, निज स्वरूप की, अपने प्रिय की स्मृति उदय होती है। इस दृष्टि से शांत का संपादन प्रत्येक भाई के लिए, प्रत्येक बहन के लिए अनिवार्य है। उसका बाह्य साधन अनावश्यक कार्य का त्याग, आवश्यक कार्य को फलाशक्ति रहित पूरा करना, अर्थात जिस कार्य में आपके विवेक और सामर्थ्य का विरोध हो उसके लिए क्षमा मांगना, और जो कार्य सामर्थ्य और विवेक के अनुरूप हो उसको निष्काम भाव से अपने प्रिय के नाते पूरा कर देना, बस यही सफलता की कुंजी है।
साधक के जीवन में प्राकृतिक नियम के अनुसार न तो न जानने का दोष है और न जाने हुए के अनुरूप जीवन बनाने के लिए सामर्थ्य का अभाव ही है। अर्थात साधन की मूल सामग्री तो साधक को प्राप्त ही है, उसके सदुपयोग न करने में साधक की ही असावधानी है, जो उसका अपना बनाया हुआ दोष है। अपने बनाए हुए दोष के मिटाने का दायित्व अपने पर ही है, किसी और पर नहीं। सभी दोष अविवेक के कार्य हैं। अविवेक केवल विवेक का अनादर है, उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इस कारण विवेक के आदर में ही अविवेक का विनाश है। जिस प्रकार प्रकाश होने पर अंधकार का दर्शन नहीं होता, उसी प्रकार विवेक का आदर करने पर सीमित अहम भाव रूपी अंधकार जो अविवेक है स्वतः मिट जाता है, उसके मिटते ही समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि जिस भूमि में दोष निवास करते थे वह भूमि ही शेष नहीं रहती। यह नियम है कि करने का अंत होता है और उसके परिणाम का भी कालांतर में नाश होता है। की हुई भूल को न दोहराने का व्रत लेने से भूल मिट जाती है और कालांतर में भूल का परिणाम भी मिट जाता है, मौलिक निर्दोषता सुरक्षित हो जाती है। हम जो कुछ करते हैं उसका परिणाम हम ही तक सीमित नहीं रहता, अपितु समस्त विश्व में फैलता है, क्योंकि कर्म बिना संगठन के नहीं होता। अतः संगठन से उत्पन्न होने वाले कर्म का परिणाम व्यापक होना स्वाभाविक है। इस दृष्टि से हम जो कुछ करें वह उस उद्देश्य को सामने रखकर करना चाहिए कि हमारे द्वारा दूसरों का अहित तो नहीं हो रहा है। यदि हमारे द्वारा होने वाले कर्मों से दूसरों का अहित हो रहा है तो हमारा भी अहित निश्चित है। अतः इस कर्म विज्ञान की दृष्टि से हमें वह नहीं करना चाहिए जिसमें किसी अन्य का अहित हो, अपितु वह अवश्य करना चाहिए जिसमें सभी का हित हो। कर्तव्य पालन की कसौटी है कि फल की आशा स्वभाव से ही न रहे। यह कहना अत्युक्ति न होगी कि कर्तव्य पालन का होना ही महान फल है, क्योंकि कर्तव्य पालन के पश्चात करने का प्रश्न ही शेष नहीं रहता। जब साधक जो कर सकता है वह कर डालता है, तब क्या साध्य जो कर सकता है वह नहीं करेगा? क्या साध्य अपने कर्तव्य से च्युत हो सकता है? कदापि नहीं। अपितु साध्य तो इतने उदार हैं कि साधक को भी करने की सामर्थ्य प्रदान करते हैं। जिस प्रकार माँ अपने शिशु के लिए स्वतः सब कुछ करती है, उसी प्रकार साध्य साधक के लिए सब कुछ करते हैं। समाज में कर्तव्य परायणता फैलती है तो कर्तव्य पालन से फैलती है, उपदेश आदेश और संदेश से नहीं फैलती है। शासन का भय और प्रलोभन से भी कोई किसी को कर्तव्यनिष्ठ नहीं बना सकता। अपना कर्तव्य है कि दूसरों के अधिकार की रक्षा की जाए। कर्तव्य परायणता वह विज्ञान है जिससे मानव जगत के लिए उपयोगी होता है और स्वयं योग विज्ञान का अधिकारी हो जाता है, कारण कि कर्तव्य परायणता विद्यमान राग की निवृत्ति में हेतु है। राग रहित हुए बिना कोई भी मानव अपने विकास में समर्थ नहीं होता। इस दृष्टि से कर्तव्यनिष्ठ होना अनिवार्य है। कर्तव्य पालन का अर्थ कर्तव्य के अभिमान में क्रिया जनित सुख लोलुपता में एवं फलाशक्ति में आबद्ध होना नहीं है। ज्यों ज्यों कर्तव्य परायणता आती जाती है, त्यों त्यों करने का राग, पाने का लालच, जीने की आशा और मरने का भय स्वतः मिटता जाता है। सर्वांश में कर्तव्यनिष्ठ होने पर मानव स्वतः अपने ही में अपने सर्वस्व को पाकर कृतकृत्य हो जाता है। इस दृष्टि से प्रत्येक कर्तव्य कर्म आस्तिक की पूजा, अध्यात्मवादी का साधन एवं भौतिकवादी की सेवा है। सेवा विश्व प्रेम में, साधन असंगता पूर्वक विश्राम में और पूजा प्रभु प्रेम में परिणत हो जाती है। कर्तव्य पथ से भी मानव विश्राम प्राप्त कर सकता है। इस दृष्टि से कर्तव्य भी स्वतंत्र पथ है। कर्तव्य की पूर्णता होने पर विश्राम तथा विश्व प्रेम एवं अनेकता में एकता का साक्षात्कार बड़ी ही सुगमता पूर्वक स्वतः होता है। प्रेम का आरंभ किसी भी प्रतीक में क्यों न हो, किंतु प्रेम स्वभाव से ही विभू हो जाता है। अतः विश्व प्रेम भी विश्व से अतीत आत्मरति एवं प्रभु प्रेम के रूप में परिणत होता है।